संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। चिंतन की दृष्टि से 12 भावनाओं का सर्वाधिक महत्व है। इन 12 भावनाओं में अभी तक अपन ने 7 भावनाओं की चर्चा की, अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना और आश्रम भावना। शुरू की जो 6 भावनाएं हैं, अनित्य भावना से लेकर असुचि भावना तक, उन भावनाओं में संयोगों की असरणता, संयोगों की अनित्यता, क्षणभंगुरता, असरणता, असारता, निरर्थकता, असुचिता, पृथकता ये बताई, और इसके आधार पर ये बताने की कोशिश की कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद, यहाँ तक कि शरीर आदि संपूर्ण जो संयोग हैं, इन पे से हमें अपनी दृष्टि को हटाना है और अपने भगवान आत्मा में अपनी दृष्टि को ले जाना है। इसके बाद आश्रम भावना में इन्हीं संयोगों के आधार पर, संयोगों के लक्ष्य से जो अपनी आत्मा में मोहराग देश के परिणाम पैदा होते हैं, मोहराग देश के भाव पैदा होते हैं, वे भाव भी आत्मा नहीं हैं, वे भी आत्मा से भिन्न हैं, क्योंकि वे आत्मा को अनंत दुख देने वाले हैं, दुखदायक हैं, असुचि हैं, अपवित्र हैं, इसलिए उनसे भी यह भगवान आत्मा भिन्न है, यह बात बताई। इस तरह इन 7 भावनाओं में अपने से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं, जिनका आत्मा से यद्यपि कोई संबंध नहीं है, फिर भी आत्मा ने जिन्हें अपना मान रखा है, और उनसे जो राग द्वेष करके निरंतर कर्म बंध करता रहता है, दुखी होता रहता है, उनसे और उनसे लक्ष्य होने वाले राग द्वेष भावों से आत्मा भिन्न है, ऐसा जानकर अब इस आगे की जो समवर भावना है, 8वीं भावना समवर भावना, जिसकी चर्चा अपन को अभी आज करनी है, वो वास्तव में भेद विज्ञान की भावना है। धर्म का आरंभ भी समवर से होता है, सुखी होने का उपाय भी समवर से ही आरंभ होता है, इसलिए समवर भावना में इन जिन 7 भावनाओं में जिन संयोग और संयोगी भावों की असारता और निरर्थकता बताई है, उन्हीं से भेद विज्ञान कराया जाता है, और भेद विज्ञान करा के उनसे जो भिन्न अपना भगवान आत्मा है, उसका ज्ञान ध्यान और उसमें ही लीन होने की बात कही जाती है। इसलिए इस भावना को कहते हैं देह दीबल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर आय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। ये भगवान आत्मा की बात चल रही है कि वो कैसा है कि देह रूपी मंदिर में रहता है, देह देवल में रहे। ये देह माने अपना शरीर है ना, इस शरीर को वहां मंदिर की उपमा दी है, और अपना जो भगवान आत्मा है उसके लिए मंदिर में विराजमान भगवान की उपमा दी है। भगवान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे भगवान कि जिनकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में विराजमान हैं, वो तो सिद्धशिला में विराजमान है, वो तो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, और उनकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में विराजमान हैं। और एक भगवान वो है जो अपने इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। जैसे मंदिर में विराजमान जो देवता की मूर्ति है, वो मंदिर तो नहीं है ना, मंदिर जुदा है और उसमें विराजमान देवता जुदा है। ऐसे ही ये देह जुदा है और उस देह में विराजमान भगवान आत्मा जुदा है। ये बात बताने के लिए यहां पर देह को मंदिर की उपमा दी गई है। और दूसरी बात ये भी है कि जो मंदिर की पवित्रता है, मंदिर की जो महिमा है, उसमें विराजमान देवता के कारण है। यदि मंदिर में देव की प्रतिमा नहीं हो तो उसे कौन मंदिर कहेगा, उसे कौन नमस्कार कहेगा, वहां कौन जाएगा। ऐसे ही इस देह रूपी मंदिर में यदि भगवान आत्मा नहीं हो तो उसको कौन नमस्कार करेगा। देखो, हमारे जो गुरुजी हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, हम उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं। यदि उन गुरुजी के उस देह में आत्मा ना हो तो उन चरणों में हम माथा टेकेंगे? अथवा वे जूते पहने हुए हैं तो हम उनसे ये तो नहीं कहते हैं कि हमें आपको नमस्कार करना है तो आप जूते खोल दीजिए पहले। हम नमस्कार करते हैं ना, लेकिन जूते अलग रखे होंगे तो हम उन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि उनकी महिमा तो गुरुजी के पैरों में होने से है, और गुरुजी के देह की महिमा भी गुरुजी की आत्मा की वजह से है, क्योंकि वैसा देह तो हमारा भी है और भी लोगों का है। हम उनके चरणों में तो अपना माथा नहीं टेकते हैं। तो जो मिट्टी के बने हुए, ये पुद्गल के बने हुए जो शरीर है, वो तो हमारे लिए पूज्य नहीं है, लेकिन उसमें जो पूजनीय आत्मा बसती है, हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, साधु संत हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, तो उनकी देह तो मैली कुचैली होती है, वो तो जीवन भर के स्नान वृत्ति होते हैं, तो दंत धोबन भी नहीं करते हैं, मंजन भी नहीं करते हैं, तो उनका शरीर तो हमसे अपेक्षाकृत ज्यादा मैला कुचैला रहता है। तो हम उनके शरीर को थोड़ी नमस्कार करते हैं, उसमें जो आत्मा विद्यमान है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को नमस्कार करते हैं, मंदिर को नहीं। ऐसे ही देह में जो हमारा भगवान आत्मा है, वो वंदनीय है, वो अभिनंदनीय है, वो आराधना करने योग्य है। इसलिए वो कहते हैं कि मंदिर की जो महिमा है वो देवता की वजह से है, इस देह की महिमा है वो आत्मा की वजह से है। ये बात बताने के लिए उन्होंने देह को मंदिर कहा। पहले की 12 भावनाओं के चिंतमन में इसको ही जेल भी कहा था। तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले, ऐसा भी कहा था ना कि ये शरीर जेल है, ये जो पत्नी है वो बेड़ियां हैं, और जो परिजन जो कुटुंबी जन हैं वे हमारी रक्षा करने वाले हैं। रक्षा करने वाले ऐसे नहीं कि कोई हमें मार ना जाए और ये रक्षा करेंगे। जैसे जेल में कैदी होता है ना तो पुलिस उनकी रक्षा करती है, माने वे भाग ना जाए, हम भाग ना जाए, ऐसी रक्षा करने वाले कुटुंबी जन है। वहां उद्देश्य ये था कि देह को कारागार कहने का, देह को जेल कहने का उद्देश्य ये था कि इसमें से हमें छूटना है, इससे हमें राग तोड़ना है, इससे जो हम इतना अधिक राग करते हैं ना, वो राग हमारा थोड़ा कम हो, इससे हमारा एकत्वमत्व कम हो, इसमें हमारा अपनापन छूटे, इसके लिए उसने वहां जेल कहा था। पत्नी और परिवार से जो हम इतना राग करते हैं, उसमें ही सारी जिंदगी उनकी सेवा में ही गुजार देते हैं, और आत्मा परमात्मा को समझने की हमें फुर्सत भी नहीं मिलती है, इसलिए वहां पर उनको क्या कहा था, पत्नी को कहा था बेड़ी, और परिवारजनों को कहा था तुम्हें जेल में बंद रखने वाले, जेल में से भाग ना जाओ ऐसी सुरक्षा करने वाले। और वहां उसी देह को मंदिर कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ये भगवान आत्मा रहता है। देखो, जेल की जिस कोठरी में कभी गांधी जी बंद रहे होंगे, अंग्रेजों के जमाने में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो आज वो कोठरी को भी हम कितने पवित्र भाव से याद करते हैं। यद्यपि वे तो उसमें जेल कैदी के रूप में रहे थे, लेकिन हमारे लिए वो एक मंदिर जैसी जगह बन जाती है, परम सम्माननीय जगह हो जाती है ना। तो ये कहते देह है तो कारागृह, जेल ही, लेकिन इसमें हमारा गांधी है ना, ये भगवान आत्मा इस कमरे में रह रहा है, इसलिए हमने उसे मंदिर की उपमा दी। कि देह देवल में रहे, यह भगवान आत्मा यद्यपि देह रूपी मंदिर में रहता है, पर ये देह नहीं है, देह से जुदा है। कुछ लोग मंदिर को ही देवता समझ लें। जैन शास्त्रों में भी नव देवताओं का जहां वर्णन है ना, वहां मंदिर को एक देवता भी कहा गया है। पंच परमेष्टि इनको पांच देव, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ये पांच हो गए ना। फिर एक जैन मंदिर, जैन धर्म, जैन वाणी, समझे ना। तो इस तरह से मिलाकर के वो अपने नौ देवताओं की जब बात करते हैं, तो उसमें एक मंदिर को भी देवता कहा गया है, लेकिन वो तो सिर्फ उसमें पंच परमेष्टि विराजमान हैं, इसलिए देव कहा गया है। नहीं तो देव वास्तविक देव होता तो मंदिर की तो छाती पर पैर रख के हम उसके अंदर जाते हैं और देवताओं के चरणों में अपना माथा लगाते हैं। कि दोनों देव एक से हैं, मंदिर में विराजमान जो देव की मूर्ति है वो, और स्वयं मंदिर, भले ही दोनों को देव कहा हो लेकिन दोनों में कितना अंतर है। ऐसे इस देह को भले ही मंदिर कह करके हम एक देव भी कह दें, क्योंकि इसमें देव विराजमान है, लेकिन फिर भी ये देह जुदी है और उसमें विराजमान भगवान आत्मा जुदा है, ये जानना संवर भावना की पहली शर्त है। कि देह देवल में रहे, पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो वह राग से भी अन्य है। यद्यपि भगवान आत्मा में वर्तमान दशा में, इस भूले हुए भगवान में, वर्तमान में राग द्वेष देखने में आते हैं, फिर भी वो आत्मा उन राग द्वेष से जुदा है। क्या कह रहे हैं? देखो, आत्मा देह में रहता है पर देह से जुदा है, आत्मा में राग रहता है पर आत्मा उस राग से भी जुदा है। माने आत्मा जिस देह में रहता है उससे भी जुदा है, और इसमें जो रहता है संसार दशा में उससे भी जुदा है। जैन दर्शन भेद का विज्ञान है, इसलिए समवर भावना जिसमें धर्म का आरंभ होता है, भेद विज्ञान की प्रमुखता रहती है। और आत्मानुभूति में धर्म की उत्पत्ति होती है, इसलिए समवर भावना की मुख्य चीजें दो ही हैं, एक भेद विज्ञान और एक आत्मानुभूति। तो भेद विज्ञान माने क्या? किन्हीं दो पदार्थों के बीच भिन्नता जानना, इतना मात्र भेद विज्ञान नहीं है, बल्कि उन दो पदार्थों में एक पार्टी अपना आत्मा होना चाहिए और दूसरी पार्टी में सारी दुनिया होना चाहिए। इस सारे जगत को दो भागों में बांटना है, एक और राम और एक और गांव, एक और अपना भगवान आत्मा और एक और बाग स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव शरीर, और इनसे लक्ष्य होने वाले राग देश मोह के भाव, इन दो भागों में सारी दुनिया को बांटकर और हमारी दृष्टि की तराजू पर वो जो अपना भगवान आत्मा है उसका पल्ला नीचे होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि सारे जगत से ज्यादा महिमा हमें अपने भगवान आत्मा की होनी चाहिए, क्योंकि सारे जगत पर से दृष्टि हटानी है और इस भगवान आत्मा पर दृष्टि लानी है, रखनी है। इसी के लिए भेद विज्ञान किया जाता है। इसलिए उन्होंने पहले की सात भावनाओं में इन सारे संयोगों की और इनके लक्ष्य होने वाले मोह राग द्वेष की भावों की इतनी निंदा की है, अनेक तरह से उनके दुर्गुण बताए कि भाई साहब ये क्षणभंगुर हैं, ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं, तुम इनकी सेवा में क्या लग रहे हो, और जिस वक्त ये जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है कि इन जाते हुए को कोई रोक लेगा, ये अश्रण भावना में कहा था। और यदि तुम्हारे पास रह भी जाएं तो इनमें कुछ भी माल नहीं है, सार नहीं है, इनका तुम्हारे साथ रहना वैसा ही निरर्थक है जैसे ये रहें चाहे ना रहें, क्योंकि तुम अपने सुख दुख के अकेले ही साथी हो और ये सारे पदार्थ तुमसे जुदे हैं और गंदे भी हैं, और शरीर के आधार पर, गंदगी के आधार पर उन्होंने इस बात को बताई थी कि नव द्वार बहें घिनकारी अस देह करे कम्यारी। और फिर तो वो यहाँ कहते हैं कि इन जो सारे पदार्थ हैं बाहर के, इनसे आत्मा का संबंध जोड़ने वाले कौन है, ये राग देश के भाव, ये इनमें जो अपनापन की बुद्धि है। तो कहते हैं कि जो चीजें इन्हें हमें अपनी बताती हैं ऐसा मिथ्यात्व भाव, और जिनसे राग होता है ये सब, ये वो राग और वो मिथ्यात्व भी इनके साथ ही डाला, और इन सब से हमारा भगवान आत्मा जुदा है, ये बात इन दो पंक्तियों में कही गई है कि वह देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, हे राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। राग माने अकेला राग मत लेना, राग में देश भी शामिल है, और राग देश में 25 कसाएं शामिल है, और मिथ्यात्व भी शामिल है। ये राग शब्द है वो इन सब का प्रतिनिधि है, और जो देह कहा ना वो देह शब्द है वो स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और शरीर, इन सब का एक प्रतिनिधि शब्द है। यानी हम देह से भिन्न और राग से भिन्न जब आत्मा की बात करते हैं तो उसमें इतनी चीजों से भिन्नता की बात सहज आ जाती है। अब वो जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा वास्तव में मैं हूं, ऐसा भेद विज्ञान करना इस संवर भावना का खास प्रयोजन है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, हे राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। कि यद्यपि यह भगवान आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, इसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, यह ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रस कंद है, इस शक्तियों का संग्रहालय है, ये गुणों का गोडाउन है, फिर भी वे गुण जुदे जुदे नहीं हैं, सब मिलके एक आत्मा ही है। उन्हें जुदे जुदे देखना ये भी आत्मा को देखने का उपाय नहीं है, इसका नाम है गुण भेद से भी भिन्न है और पर्याय से भी पार है। पर्याय माने क्या, कोई भी चेंजेज परिवर्तन होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो मिथ्या दर्शन रूप हो चाहे राग रूप हो चाहे वितरागता रूप हो, वो सब पर्याय क्षणभंगुर होती हैं, अनित्य होती हैं। ये भगवान आत्मा नित्य है तो उनसे भी पार है, ऐसा ये भगवान आत्मा ही एकमात्र साधकों की साधना का एकमात्र आधार है। जितने भी साधक हैं, आत्मा की साधना करने वाले जीव हैं, वो किसकी साधना करते हैं? अपने आत्मा की। जरा विचार करो कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो कौन सी अवस्था में हुई थी? आहार करते वक्त हुई थी? विहार करते वक्त हुई थी? नहीं हुई थी ना। तो कब हुई थी? कि जब वो आत्मा का ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान अवस्था में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें वितरागता की प्राप्ति हुई थी, वे आत्मा से परमात्मा ध्यान की अवस्था में बने थे, वे रागी से वितरागी ध्यान की अवस्था में बने थे, वे अल्पज्ञानी से सर्वज्ञ ध्यान की अवस्था में बने थे, वे अनंत दुखी से अनंत सुखी ध्यान की अवस्था में हुए थे, तो वे किसका ध्यान कर रहे थे? कि आत्मा का। तो किसकी आत्मा का? आदिनाथ की आत्मा का या अजितनाथ की आत्मा का? तो अपनी आत्मा का, स्वयं की आत्मा का। तो ये सुखी होने का उपाय स्वयं की आत्मा का ज्ञान और स्वयं की आत्मा का ध्यान है। तो जितने भी साधक हैं, जो आत्मा की साधना करने वाले हैं, उनको एकमात्र ध्यान का ध्येय उनका स्वयं का आत्मा है। किसी दूसरे परमात्मा का ध्यान का ध्यान करेंगे तो उन्हें कर्म का बंध होगा, भले ही बहुत अच्छे कर्म का बंध हो, जिससे वे चक्रवर्ती हो जाएं, इंद्र हो जाएं, लेकिन कर्म नहीं कटेंगे। कर्म जब भी कटेंगे वो निज भगवान आत्मा के ध्यान से ही कटेंगे। ख्याल में है ना। इसलिए वो कहते हैं कि आदिनाथ से लेके महावीर तक जब भी वे भगवान बने, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुए, अनंत सुखी हुए, तो वे अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो उन 24 तीर्थंकरों की ही बात नहीं है, जितने भी साधक आज तक दुनिया में हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, और आज जो हैं उन्हें आत्मा की प्राप्ति स्वयं अपने आत्मा के ध्यान से ही होगी, किसी दूसरे के ध्यान से नहीं होगी। इसलिए कहते हैं साधकों की साधना का एक ही आधार है। बस एक आधार है, ऐसा नहीं है कि कोई दो रास्ते हैं, कि कभी अपना ध्यान करो कभी परमात्मा ध्यान करो। इस सारे दर्शनों में, दुनिया के दर्शनों में, जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो एक कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे सुखी नहीं हुआ जा सकता है, किसी दूसरे के आशीर्वाद से सुखी नहीं हुआ जा सकता है। सुखी होना है तो अपने आत्मा को जानना होगा, अपने आत्मा को पहचानना होगा और अपने आत्मा का ही ध्यान करना होगा। एकमात्र सुखी होने का यही उपाय है। तो वो आत्मा जिसका ध्यान हमें करना है और जिसकी चर्चा भी अपन ने ऊपर की है, वो आत्मा कौन है, कैसा है, उसकी बात कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।